नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस लियाकत अहमद की पुलित्जर पुरस्कार विजेता आर्थिक इतिहास की पुस्तक है। यह प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ से लेकर महामंदी के गहराने तक की वैश्विक वित्तीय उथल पुथल को चार प्रभावशाली केंद्रीय बैंकरों के जीवन और निर्णयों के माध्यम से समझती है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉन्टेग्यू नॉर्मन, बैंक द फ्रांस के एमिल मोरो और जर्मन राइक्स बैंक के ह्याल्मार शाक्ट इसके केंद्रीय पात्र हैं। अहमद का उद्देश्य केवल घटनाओं की समय रेखा देना नहीं है, वे दिखाते हैं कि युद्ध ऋण, जर्मन क्षतिपूर्ति, मुद्रा अस्थिरता और स्वर्ण मानक जैसी संरचनात्मक समस्याओं के बीच इन व्यक्तियों के अनुमान, पूर्वाग्रह और आपसी संबंध कितने निर्णायक बने। पुस्तक का मुख्य तर्क यह है कि महामंदी कोई पूरी तरह अनिवार्य प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी। नीतिगत कठोरता, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की सीमाएं और बदलती परिस्थितियों को समझने में विफलता ने संकट को बहुत गहरा किया। जटिल अर्थशास्त्र को जीवनी, कूटनीति और संस्थागत इतिहास के साथ जोड़ना इसकी विशेषता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, चार केंद्रीय बैंकरों के निर्णयों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखने का दृष्टिकोण। पुस्तक की सबसे विशिष्ट पद्धति यह है कि यह अंतर्युद्ध काल की वित्तीय व्यवस्था को किसी अनाम बाजार शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के माध्यम से देखती है। बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, मॉन्टेग्यू नॉर्मन, एमिल मोरो और ह्याल्मार शाक्ट अपने देशों की मौद्रिक संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे थे, पर उनके निर्णयों का प्रभाव सीमाओं से बहुत आगे जाता था। ब्याज दर, स्वर्ण भंडार, ऋण उपलब्धता और विनिमय दर पर उनके कदम दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करते थे। अहमद यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये अधिकारी सर्वशक्तिमान नहीं थे। उन्हें घरेलू राजनीति, युद्धोत्तर ऋणों, सरकारों की अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे की कमी के बीच काम करना पड़ता था। फिर भी उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं महत्वपूर्ण थीं। किसी ने मुद्रा स्थिरता को प्राथमिकता दी, किसी ने राष्ट्रीय हित को और किसी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बचाने की कोशिश की। इस जीवनी परक ढांचे से आर्थिक इतिहास में जवाबदेही का प्रश्न उभरता है। संस्थाएं नियम बनाती हैं, लेकिन नियमों की व्याख्या और संकट के समय कार्रवाई मनुष्य करते हैं। पुस्तक इसीलिए बताती है कि केंद्रीय बैंकिंग को केवल तकनीकी विशेषज्ञता नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिणामों की समझ भी चाहिए। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के ऋण और जर्मन क्षतिपूर्ति ने अस्थिर शांति बनाई। अहमद के अनुसार महामंदी की पृष्ठभूमि युद्ध समाप्त होने के बाद ही तैयार हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप की वित्तीय क्षमता को तोड़ा, सरकारों को भारी उधार लेने पर मजबूर किया और अमेरिका को प्रमुख ऋणदाता बनाया। युद्ध के बाद जर्मनी पर क्षतिपूर्ति का बोझ डाला गया, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस को भी अमेरिका के युद्ध ऋण चुकाने थे। इस व्यवस्था में भुगतान का टिकाऊ चक्र बनना कठिन था। जर्मनी को विदेशी पूंजी चाहिए थी ताकि वह क्षतिपूर्ति दे सके, और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले देशों को अपनी देनदारियां चुकानी थी। जब अमेरिकी ऋण प्रवाह कमजोर पड़ता, पूरी श्रृंखला पर दबाव आता। पुस्तक जर्मनी की अति मुद्रास्फीति को भी इसी व्यापक राजनीतिक और वित्तीय तनाव के संदर्भ में रखती है। मुद्रा का पतन केवल एक राष्ट्रीय प्रशासनिक विफलता नहीं था, बल्कि पराजय, भुगतान दायित्वों और विश्वास संकट से जुड़ी घटना थी। बाद में जर्मन मुद्रा को स्थिर करने के प्रयास हुए, पर मूल समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। इसलिए 20 के दशक की स्थिरता काफी हद तक बाहरी ऋण और नाजुक समझौतों पर टिकी थी। यह विश्लेषण दिखाता है कि दंडात्मक वित्तीय व्यवस्थाएं अल्पकाल में राजनीतिक रूप से आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन यदि भुगतान क्षमता और आर्थिक पुनर्निर्माण की उपेक्षा हो तो वे दीर्घकालीन अस्थिरता पैदा करती हैं। तीसरा, स्वर्ण मानक की कठोरता ने मंदी के दौरान नीति विकल्प सीमित किए। पुस्तक में स्वर्ण मानक केवल एक मौद्रिक व्यवस्था नहीं, बल्कि नीति निर्माताओं की मानसिक प्रतिबद्धता के रूप में सामने आता है। इस व्यवस्था में मुद्रा का मूल्य स्वर्ण से जुड़ा रहता था, और केंद्रीय बैंक विनिमय दर तथा स्वर्ण भंडार बचाने को प्राथमिकता देते थे। समर्थकों को यह अनुशासन, विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा देता दिखता था। लेकिन युद्ध के बाद लौटाया गया स्वर्ण मानक पूर्व युद्ध वाली दुनिया जैसा नहीं था। कीमतें, ऋण, राजनीतिक परिस्थितियां और देशों की आर्थिक ताकत बदल चुकी थी। फिर भी कई केंद्रीय बैंकरों ने मुद्रा की पुरानी समता बनाए रखने को प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया। जब किसी देश से स्वर्ण बाहर जाता तो ब्याज दर बढ़ाना और ऋण सीमित करना सामान्य प्रतिक्रिया थी। मंदी के समय ऐसे कदम मांग, निवेश और रोजगार को और दबा सकते थे। जिन देशों के पास स्वर्ण जमा हो रहा था, वे भी हमेशा उतनी उदार नीति नहीं अपनाते थे कि वैश्विक दबाव कम हो। अहमद का तर्क यह नहीं कि स्वर्ण मानक अकेला हर संकट का कारण था, बल्कि यह कि उसके नियमों को यांत्रिक ढंग से लागू करने ने समायोजन का बोझ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर डाल दिया। पुस्तक का व्यापक सबक है कि किसी भी नियम आधारित व्यवस्था की वैधता उसके लचीले परिस्थिति संगत प्रयोग पर निर्भर करती है। चौथा, ब्याज दर। सट्टेबाजी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह का परस्पर संबंध लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस यह समझने में मदद करती है कि घरेलू मौद्रिक नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से अलग नहीं होती। 20 के दशक में अमेरिका की वित्तीय शक्ति बढ़ी और न्यूयॉर्क वैश्विक पूंजी का प्रमुख स्रोत बन गया। अमेरिकी ब्याज दरों और ऋण की उपलब्धता का असर यूरोप, विशेषकर जर्मनी की भुगतान क्षमता पर पड़ता था। बेंजामिन स्ट्रॉन्ग के दौर में अमेरिकी नीति को कभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने की जरूरत और कभी घरेलू वित्तीय अतिरेक के डर के बीच संतुलन बनाना पड़ा। कम दरें विदेशी उधार तथा परिसंपत्ति सट्टेबाजी दोनों को प्रोत्साहित कर सकती थीं। ऊंची दरें सट्टेबाजी रोकने में सहायक हो सकती थीं, लेकिन विदेशी ऋण लेने वाले देशों पर दबाव भी डालती थीं। इसीलिए पुस्तक किसी एक ब्याज दर निर्णय को सरल कारण नहीं बताती, वह उस नेटवर्क को दिखाती है जिसमें बैंक, निवेशक, सरकारें और केंद्रीय बैंक एक दूसरे की अपेक्षाओं पर निर्भर थे। 1929 के बाद जब भरोसा टूटा और पूंजी का प्रवाह पलटा तो कमजोर बैंकिंग तंत्रों और ऋणी अर्थव्यवस्थाओं पर तेजी से असर पड़ा। यह प्रसंग बताता है कि वित्तीय स्थिरता के लिए केवल मुद्रास्फीति या घरेलू बाजार पर ध्यान पर्याप्त नहीं। नीति निर्माताओं को ऋण के स्रोत, पूंजी के अचानक पलटने की संभावना और बैंकिंग प्रणाली की सहन शक्ति को भी देखना होता है। अंत में महामंदी को गहरा करने वाली बौद्धिक जड़ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की विफलता। अहमद की व्याख्या में महामंदी का विस्तार केवल शेयर बाजार गिरने या बैंक विफलताओं का परिणाम नहीं था। निर्णायक समस्या यह थी कि संकट बढ़ने पर प्रमुख देश और केंद्रीय बैंक साझा तथा पर्याप्त प्रतिक्रिया तैयार नहीं कर सके। प्रत्येक संस्था अपने स्वर्ण भंडार, विनिमय दर और राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिष्ठा की रक्षा में लगी रही। परिणाम स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था में मांग घटती गई, ऋण सिकुड़ा और बैंकिंग घबराहट सीमाओं के पार फैलती गई। पुस्तक जॉन मेनार्ड केन्स को उस समय की प्रचलित सोच के महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में रखती है। केन्स युद्धोत्तर ऋण और क्षतिपूर्ति व्यवस्था की अस्थिरता तथा कठोर समायोजन की लागत पर चेतावनी देते थे। फिर भी चेतावनी को स्वीकार करना राजनीतिक रूप से कठिन था, क्योंकि इसके लिए पुराने सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय दावों और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर पुनर्विचार करना पड़ता। अहमद इस विफलता को बौद्धिक इच्छा शक्ति की कमी से जोड़ते हैं, अर्थात नीति निर्माताओं का बदलती वास्तविकता के अनुसार अपनी धारणाएं संशोधित न कर पाना। इसका अर्थ यह नहीं कि समाधान सरल थे, परिस्थितियां सचमुच कठिन थीं, पर पुस्तक का जोर इस बात पर है कि अनिश्चितता में निष्क्रियता भी एक नीति विकल्प बन जाती है, जिसके भारी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। आर्थिक संकटों में समय पर सहयोग, तरलता और विश्वास बहाली इसलिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। निष्कर्ष में यह पुस्तक आर्थिक इतिहास, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वित्तीय संकटों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अर्थशास्त्र का औपचारिक प्रशिक्षण न रखने वाला पाठक भी इससे लाभ ले सकता है, क्योंकि लियाकत अहमद ब्याज दर, स्वर्ण प्रवाह, ऋण और विनिमय दर जैसे विषयों को व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं के संबंध में समझाते हैं। नीति विद्यार्थियों और वित्त पेशेवरों के लिए इसका मूल्य इस बात में है कि यह दिखाती है कि तकनीकी निर्णय कभी केवल तकनीकी नहीं होते, वे राजनीतिक बाध्यताओं, अधूरी जानकारी और संस्थागत विश्वास से प्रभावित होते हैं। पुस्तक पढ़ने से यह समझ विकसित होती है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक देश की नीति दूसरे देशों की कमजोरियों को कैसे बढ़ा सकती है, और संकट के दौरान पुरानी धारणाओं से चिपके रहने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसका जीवनी परक ढांचा है। यह न तो केवल महामंदी की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण है, न ही केवल आर्थिक सिद्धांत की पाठ्य पुस्तक। यह चार केंद्रीय बैंकरों की महत्वाकांक्षाओं, सीमाओं और संबंधों को युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं से जोड़ती है। हालांकि इसका जोर व्यापक गणितीय मॉडल पर नहीं है, यही गुण इसे इतिहास और नीति के बीच एक सुलभ सेतु बनाता है। पाठक को एक उपयोगी सावधानी भी मिलती है कि विशेषज्ञता, प्रतिष्ठा और नियमों का होना सही निर्णय की गारंटी नहीं देता। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लियाकत अहमद, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।